कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा से श्री राधा मदन मोहन मंदिर इस्कान उज्जैन के तत्वधान में श्री भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव और उसके 7 दिवस उपलक्ष में शास्त्री नगर के इस उद्यान में भगवत अमृत गीता अमृत का जो सुबह और शाम सत्संग रखा गया है उसमें आप सब महानुभाव कृष्ण भक्ति में प्रेम रखने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी श्रीमद् भगवत गीता के 7वां स्कंद जिसमें भगवत ज्ञान और भगवान के विषय में विज्ञान की चर्चा की गई है। ज्ञान भगवान का ऐश्वर्य का है जिसके द्वारा भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा बढ़ती है, संबंध स्थापित करने की हमको प्रेरणा मिलती है। और विज्ञान भगवान की मधुरता है, मिठास है, कितना वो भक्तों से प्रेम करते हैं। तो ये भगवान ही अपने मुख से शिक्षा दे रहे हैं श्री कृष्ण। और कल हमने प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ मोहित संसार भगवान को नहीं जान सकता, इस प्रसंग के ऊपर कथा को विराम दिया था और फिर चार प्रकार के लोग भगवान का शरण लेते नहीं है और चार प्रकार के लोग भगवान के शरण तो नहीं लेते हैं लेकिन भगवान के पास किसी कारण से जाते हैं। तो थोड़ा सा हम पहले आज ये त्रिगुण माया क्या है, देवी एष गुणमयी मम माया दुर्त्रया, ये है क्या। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के सातवें अध्याय में नारद जी की प्रेरणा से व्यास देव सरस्वती के तट पे भक्ति योग से मन को समाहित करके समाधि में बैठे तो उनको भगवान का दर्शन हुआ, पूर्ण पुरातन आदि पुरुष का। लेकिन वो भगवान अकेले नहीं, अपनी सारी शक्तियों के साथ भगवान का दर्शन हुआ। व्यास देव ने देखा कि भगवान की माया शक्ति भगवान के पीछे है, भगवान की माया शक्ति भगवान के आगे आने में शर्माती है, उसको लज्जा आती है, वो आगे नहीं आती। माया शक्ति भगवान के पीठ की तरफ पीछे रहती है और वो पूर्ण भगवान के वश में ऐसे रहती है जैसे छाया अपनी हमारे वश में होती है। और फिर व्यास देव ने देखा सारे जीव, हम जीवात्माएं, बद्ध जीवात्माएं, जीव भूत, वो सारे के सारे माया के वश में है, माया ने उनको मोहित करके रखा है। और तब व्यास देव कहते हैं ये सारे के सारे अपना अनर्थ कर रहे हैं, माया के मोह के कारण माया के वश में होकर सारे ही जीवन अपना अनर्थ, सारे जीव अपना अनर्थ कर रहे हैं। अनर्थ का मतलब अपना स्वार्थ नहीं सपना समझ रहे हैं, अपनी हानि कर रहे हैं, अपना लाभ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा व्यास देव जैसा विद्वान सभी जीवों को कैसे कह सकता है कि अनर्थ कर रहे हैं, कि हम अनर्थ कर रहे हैं, कि हम अपना स्वार्थ नहीं जानते हैं। व्यास देव कहते हैं ये बेचारे नहीं जानते हैं अपना स्वार्थ, लेकिन विद्वान जानते हैं। तो वो क्या है जो हम अनर्थ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दे के देखिए कि हम 24 घंटे में जो भी कार्य करते हैं वो आत्मा के निमित्त करते हैं कि शरीर के निमित्त करते हैं, आत्मा के लिए करते हैं कि शरीर के लिए करते हैं। उत्तर आएगा प्रायः 99.99% सब लोगों का कार्य शरीर से संबंधित है। अपनी पहचान है नहीं कि हम आत्मा है, सभी काम शरीर के संबंध में कर रहे हैं, इसलिए वो अपना हित तो जानते ही नहीं है। शरीर तो क्षण भंगर, आज नहीं तो कल छूटने वाला है, उसके लिए इतनी सारे इतनी प्रयास, इतना सामग्री, इतना सुविधाएं, और जो आत्मा नित्य है उसके लिए घंटा आधा बैठ के भगवान का नाम जपने का भी इनको सामर्थ्य नहीं है, बुद्धि नहीं है, प्रेरणा नहीं है, इच्छा नहीं है, विचार नहीं है, यही तो अनर्थ है। जिसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जीव जागो, ए भाई सोए क्यों हो, बोला हम सोए कहां हैं, चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। बोला ये नहीं, तुम आध्यात्मिक दृष्टि से सोए हुए हो, तुम्हें आत्मचिंतन का अभी तक जागृति नहीं हुई है, तुम्हें अपने हित का पता नहीं है। इसको श्री प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, पिंजरे के अंदर तोता, बुढ़िया तोते के लिए पिंजरा खरीद करके आई, लेकिन पिंजरे को तो रोज धोए साफ करे, गोल्ड प्लेटेड करा दे, उसके ऊपर हीरा माणिक मोती मढ़ती जाए, फूल चढ़ाती जाए, लेकिन तोते को खाने के लिए कुछ भी नहीं दे, तो क्या उसके पिंजरे की सारी सेवा से तोता संतुष्ट होता? क्या तो क्या पिंजरे के लिए तोता लिया कि तोते के लिए पिंजरा लिया? तो इस दृष्टिकोण से हम सभी, ये शरीर पिंजरा है और जीव आत्मा इसमें असल में तोता है। हम शरीर के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, कपड़े भी बदल रहे हैं, खिलाने पिलाने का व्यवस्था कर रहे हैं, रहने के लिए घर, जाने के लिए गाड़ी, और क्या क्या कर रहे हैं शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के चिंतन का लोगों को समय ही नहीं है। क्यों समय नहीं है? तब श्री चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान। ये बेचारे सब लोग माया के कारण मोहित हैं, मुग्ध हैं। मुग्ध कहते हैं असल में पागल हैं, अपने हित को नहीं जानते हैं। तो इनके बुरे हाल को देखकर कृष्ण कृपा कैला, भगवान श्री कृष्ण ने कृपा किया। क्या कृपा किया? दिया वेद पुराण, ये सारा वेदों का सार भगवत गीता दिया। काहे के लिए दिया? और वहां व्यासदेव लिखते हैं, बिचारे अपना अनर्थ कर रहे हैं, अनर्थ उपशमनम, अनर्थ की उपशमनम, उनसे ऊपर उठा के अनर्थ से बचाने के लिए मैंने सात्वत संहिता की रचना की। सात्वत कहते हैं भक्तों को, सात्वत संहिता कहते हैं भागवत को। मैंने सारे विश्व के, ब्रह्मांड के माया मुग्ध जीवों को अनर्थ से बचाने के लिए श्रीमद् भागवत का आवाहन किया, प्रकट किया। बोला कैसे भागवत सबका लाभ करेगी? केवल श्रवण मात्र से शुश्रूष शब्दधानस्य, श्रद्धा से केवल सुना जाए, कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उपजायते, भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष में भक्ति जागृत हो जाएगी। बोला भक्ति जागृत हो गई तो पता कैसे लगेगा? शोक मोह भय अपाह, उसके जीवन में भूतकाल का शोक चला जाएगा, वर्तमान का मोह चला जाएगा और भविष्य का भय चला जाएगा, तीनों कालों के दुखों से मुक्त हो जाएगा। आगे चरितमृत कहते हैं, इस माया से बचने के लिए भगवान ने तीन रूप से हमारी सहायता कर रहे हैं। भगवान स्वयं रूपे, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, हमारे सुहृद हैं, हमारे अज्ञात मित्र हैं, हम नहीं जानते हैं, वो हमको जानते हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, कभी हमको अकेला नहीं छोड़ा। किसी की जून में चले जाएं, भगवान हमारे साथ हैं, क्योंकि वो हमारे शुभ चिंतक हैं, सुहृद हैं, हमसे प्रेम करते हैं। एक भगवान स्वयं रूपे, दूसरा शास्त्र रूपे, वेद व्यास का अवतार लेकर और एक वेद को चार में विभाजित किया, उनको समझाने के लिए 17 पुराण लिखे और फिर महाभारत में भगवत गीता को दिया और फिर सारे वेदों के पके हुए फल श्रीमद् भागवत को प्रकट किया। तो एक भगवान स्वयं रूप से, एक वेद व्यास के अवतार में शास्त्रों का देकर, और तीसरा साधु गुरु रूपे, साधु गुरु के रूप में उन शास्त्रों को समझाने के लिए भी भगवान ही आते हैं। तो तीन तीन भगवान ने सहायता की है तीन प्रकार से हमारी। अब बात यह है कि हम आत्मा का आवाज, परमात्मा का अंदर में आवाज सुनते नहीं है। बोले कब तक नहीं सुनते हैं? जब तक तीनों गुणों का प्रभाव होता है। तमोगुण में हम इतने आलसी होते हैं कि भगवान बुला बुला के कह रहा है अरे भाई मेरी कथा सुन लो, हम आलस में पड़े हैं, उठ नहीं पाते। रजोगुण में हम इतने लोभ लालच की भागा दौड़ी शोर शराबे में है कि भगवान का आवाज सुनाई देता नहीं है। वैसे भगवान सबको बुलाते कैसे हैं? भगवान श्री कृष्ण के लिए बुलाने का ओरिजिनल बांसुरी है, जिसमें वो जिसका नाम लेके बोलते हैं बुलाते हैं उसकी घंटी बजती है। ये श्री कृष्ण के मोबाइल फोन का ओरिजिनल बांसुरी थी। वो गोपी का नाम लेते थे वही गोपी जागती थी, वही भागती थी। गाय का नाम लेते थे वही गाय भागती हुई आती थी। तो भगवान की बांसुरी तो हृदय में बजा रहे हैं, लेकिन रजोगुण के भागा दौड़ी में शोर शराबे में सुनते नहीं है। और सतोगुण में इतने सुख में हम मदमस्त हैं कि भगवान की बात नहीं सुन पा रहे। बोला कब सुन पाएंगे भगवान की बात? बोला जब तीनों गुणों से ऊपर जाएंगे। बोला तीनों गुणों से मुक्त होने का साधन क्या है? तब कहते भक्ति योग तीव्रेण अविविचारेण भक्ति योगेन सुगुणान समतैतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। फिर ब्रह्म भूत हो जाओगे जीव भूत से। कैसे? भक्ति करने से। तो श्रीमद् भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में भक्ति कैसे करनी है, भक्ति करना ही हमारा मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य है। तो यहां वो तीन गुणों की माया से बचना बहुत मुश्किल है। बोला कौन बच सकता है? तब भगवान ने क्या कहा? ये माम प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंती ते। जो मेरे पांव पकड़ लेता है, जो मेरा शरण ले लेता है, और शरण लेने की प्रक्रिया क्या है, कैसे शरण लिया जाए? शरण लेने की प्रक्रिया है भगवान के इच्छा के अनुसार काम करना। जो चीज भगवान के विपरीत है उसका परित्याग करना, और यह विश्वास रखना कि भगवान हमारा रक्षक है, और जिसकी भगवान रक्षा करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमें अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो फिर ये माया के तीन गुणों के प्रभाव से जीव बच जाता है। कौन नहीं बच सकते हैं? जो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। मानव के शरीर में गधे सुअर कुत्ते जैसा जीवन बीता रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान होते हुए भी, बुद्धि होते हुए भी भगवान की ओर ध्यान नहीं जाता है। अपनी प्रशंसा में लगे हुए हैं, भगवान की प्रशंसा करने में उनको इच्छा ही नहीं हो रही है। नराधम माया पहर्त ज्ञान। बड़े बड़े विद्वान हैं, गीता का ऊपर टीका भी लिखते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा शरण लो। वो लिखेंगे भगवान का, कृष्ण का शरण लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे विद्वान के नाम में वेद वाच के पूजा पाठ करके भी भगवान श्री कृष्ण का निषेध करना है, यह इनका माया ने ज्ञान हर लिया है। और किसी की भी पूजा कर लो, लेकिन भगवान की, कृष्ण की पूजा नहीं करनी। और चौथे वो हैं जिनके अंदर तो आसुरी भाव ऐसा प्रकट हुआ है कि भगवान क्या, धर्म क्या, भक्ति क्या चाहिए ही नहीं। इनको माया ने ऐसे पकड़ रखा है, कोई भगवान का दयालु भक्त कृपा करे तो इनका उद्धार हो सकता है, नहीं तो ये हमेशा दुखी रहेंगे। फिर भगवान ने, कल हमने इसके ऊपर चर्चा शुरू की थी, 4 प्रकार के भक्त भगवान कहते हैं मेरा भजन करते हैं, शरण नहीं लेते हैं अभी तक, लेकिन मेरा भजन करते हैं। भजन करने के अर्थ होता है सेवा करना। भजन शब्द की परिभाषा है सेवा करना। मेरी पूजा करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। बोला काहे के लिए सेवा करते हैं? बोला उनकी सुकृति का उदय हुआ है। वो दुष्ट प्रवृत्ति के नहीं है, वो उनका सुकृति, सुकृति कहते हैं उनके पुण्य उदय हुए हैं। तो बोला कौन से सुकृति किसकी हुई है? बोला बेचारे जो दुखी है भगवान के पास आते हैं कि हमारे को तुम्हारा दुख दूर कीजिए। बोला दुखी का उदाहरण क्या है? बोला गजेंद्र, बड़ा हाथी शक्तिशाली, बड़ा राजा तपस्वी इंद्र द्युम्ना, एक ऋषि अगस्त का अपमान हो गया, जाने अनजाने में शराब के कारण हाथी बना, मगर मच्छ ने पकड़ लिया पांव पानी में कीड़ा करते का, मगर मच्छ का बल पानी में बढ़ा, हाथी का बल कम हुआ और गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म में की हुई भगवान की भक्ति याद आ गई और उसने भगवान गोविंद की प्रार्थना की। आरत भक्त गजेंद्र की भगवान ने ग्रह से रक्षा की, मगरमच्छ से रक्षा की। ये उदाहरण है आर्त भक्त का। जब दुखी हो, कोई और सहारा नहीं हो, तो ये प्रार्थना की, भजन किया, पूजा की, वैसे द्रौपदी तो भगवान श्री कृष्ण की सखी है, किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं हुई है, यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है, याज्ञ का है, अयोनिज है, फिर भी जब वो संकट में थी तो दोनों हाथ ऊपर करके भगवान श्री कृष्ण का शरण लिया, तो भगवान ने उसकी भी लाज बचाई। भगवान के भक्त भी, भगवान के भक्त भगवान का शरण लेते हैं, जो भक्त नहीं है आर्त भाव में भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन आर्त भाव भक्तों में भी आता है, तब वो एकदम भगवान को प्रार्थना करके शरण ले लेते हैं। लेकिन उदाहरण गजेंद्र का लिखा है शास्त्र में। दूसरे कौन है? बोले जिज्ञासु, जानना चाहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वही काम जीवन में सब करते हुए मरते जा रहे हैं, पता किसी को नहीं पड़ रहा है क्यों कर रहे हैं। बच्चे हुए थे, बड़े हो गए, पढ़ लिया, नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे पालने हैं, और क्या करना है? फिर बच्चे घर से बाहर निकालेंगे और फिर इंतजार करते करते मरना है, बस हो गया। काहे के लिए सब ऐसे कर रहे हैं? आखिर कोई उद्देश्य होगा ना जीवन का, तो उसकी जिज्ञासा करना चाहिए ना। तो जिज्ञासु का उदाहरण है सनकादि ऋषि। ये सनकादि ऋषि बहुत बड़े भृगुवंशी ब्राह्मण, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे, करना भी विश्व का कल्याण चाह रहे थे, लोगों को कलयुग के प्रभाव से बचाना चाह रहे थे, लेकिन यज्ञ कर रहे थे जो कलयुग में काम नहीं करता है। लेकिन यज्ञ दोपहर के बाद पूर्ण आहुति हो जाती है और शाम को नेम होता है यज्ञ में, उपअंग होता है यज्ञ का कथा सुनना कि शाम को कथा सुनी जाए, क्योंकि यज्ञ के बाद बेकार दुनिया की बातें ना हो। तो उस कथा में उन्होंने जिज्ञासा की कि सबका श्रेय क्या है, सब शास्त्रों का सार क्या है, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, उसमें अवतार कैसे लेते हैं, विशेष रूप से कृष्ण भवता बलराम ऐसे गुप्त रूप से कैसे यदुवंशियों में अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद धर्म ने किसका शरण लिया, ये 6 प्रश्न पूछे, इसको बोलते हैं जिज्ञासा। सनकादि ऋषियों के ये 6 प्रश्न है और भगवान षडगुण संपन्न होता है और ये 6 प्रश्न भगवान की भगवता को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए है, इसलिए सनकादि ऋषियों को जिज्ञासु बोलते हैं। अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब अपने सौभाग्य के लिए, राजपाठ के लिए, धन धान्य के लिए, सुख सुविधा के लिए भगवान के पास जाए, बोले इसका उदाहरण कौन है? बोला ध्रुव महाराज, अपने पिता से बड़ा राज चाहते थे तो भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए, भगवान का भजन करने के लिए चले गए। तो ध्रुव महाराज अर्थार्थी भक्तों का उदाहरण है। ये तीनों भी आगे जाकर भक्तों के संग से प्रायः भक्त बन जाते हैं। इनको भक्तों का संग मिलेगा तो ये भक्त बन जाएंगे। प्रायः श्रील प्रभुपाद को प्रचार काल में अमेरिका में अधिकांश जिज्ञासु मिले जो सुख की खोज करने रहे थे, वो नशे में सुख ढूंढ रहे थे। लड़का लड़कियां आपस में स्वच्छंद घूमने में सुख ढूंढ रहे थे, लेकिन प्रभु वो पूछ रहे थे सुख कहां है। उन्होंने देखा कि हम अमेरिका के इतने सारे समृद्ध देश के धनी परिवार के संतान है, हमारे पिता के घर में धन की गिनती नहीं है, लेकिन रोज हमारी माँ और बाप लड़ते हैं और 6 महीने के बाद शादी टूटती है, और घर के अंदर सब सुख सुविधा है लेकिन घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो आखिर जीवन काहे के लिए है। उनके पास धन की कमी नहीं थी, विद्या की कमी नहीं थी, लेकिन वो सुख ढूंढ रहे थे। उन्होंने जब प्रभुपाद के पास आके कीर्तन सुना और कृष्ण भावना के अंतर्गत भगवत प्रेम का संदेश सुना, प्रभुपाद जी कहते हैं मैं किसी धर्म का प्रचार करने नहीं आया हूं, मैं तो भगवत प्रेम का संदेश देने आया हूं, साइंस ऑफ गॉड, और मैं आत्म साक्षात्कार और भगवत प्रेम ये धर्मों के जातियों के विभाजन से ऊपर है। जैसे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कोई फिजिक्स पढ़ना चाहे केमिस्ट्री पढ़ना चाहे तो वो किसी भी मजहब का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, उसको उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे प्रभुपाद जी कहते मैं तो भगवत प्रेम सिखा रहा हूं, सुखी करने का साधन सिखा रहा हूं, तो इसमें कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, वो विज्ञान को सीख सकता है। ये तो विज्ञान है, ये आत्म विज्ञान भगवत प्रेम का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड। और ये जिज्ञासु जो लोग थे उनके अंदर बहुत अवगुण थे, लेकिन शुद्ध भक्त के संग से उनका जीवन बदल गया और शुद्ध भक्त भी बन गए। चौथे कौन होते हैं? ज्ञानी च भर्तृ ऋषभ, और चौथे होते हैं ज्ञानी। उनको संसार में न धन चाहिए, न को दुख से निवृत्ति चाहिए, न ही कुछ जिज्ञासा है। वो जान गए हैं, क्या जान गए हैं, कि भगवान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये शुष्क ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि आगे वाले श्लोक में इनकी महिमा गाई जा रही है। अहम सचमम प्रिय तेषाम, इन सब में, इन चारों में ज्ञानी कौन सा ज्ञानी? बोला नित्य युक्ता, जो निरंतर मुझसे जुड़ा हुआ है। और जब जुड़ा शब्द आता है तो भगवान से जुड़ने का साधन है सेवा में लगा हुआ। नित्य युक्ता, नित्य मतलब निरंतर, हर समय नित्य युक्ता। बोला कैसे युक्त हैं आपसे? बोला एक भक्ति, एक मेरी भक्ति। उस ज्ञानी के जीवन का लक्ष्य है एक मेरी भक्ति, और मेरी सेवा में लगा हुआ है। विशिष्यते, विशेषता उसके ज्ञान की क्या है? उसमें मुख्य भक्ति है, थोड़ा सा ज्ञान है, 90% भक्ति है, 10% ज्ञान है। भक्त तो ये भी शुद्ध बिल्कुल नहीं है, मिक्स भक्ति है, मिश्रित भक्ति है, लेकिन भक्ति भारी है, ज्ञान थोड़ा है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, प्रियो ही ज्ञानी न्यो अत्यर्थम, ज्ञानी तो मुझे अति प्रिय है, ज्ञानी मुझे अति प्रिय है, अहम सच्चमम प्रिय, मैं उसको प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। तो इसमें भगवान ने ज्ञानी की बहुत सुंदर प्रशंसा की है। तो कहते बाकी चार, बाकी तीन, तब भगवान उन सब के लिए कहते हैं, उदारा सर्व एवेते गा ज्ञानी त्व आत्मैव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामेवानुतमां गतिः। उदारः सर्व एवेति, ये सारे चारों उदार हैं। उदार किसको कहते हैं? उदार कहते हैं जिसका हृदय बड़ा हो और कुछ देने को लिए तैयार हो, दानी को कहते हैं उदार। तो भगवान ने उदार क्यों कह दिया? रामानुज आचार्य इस शब्द को कहते हैं कि भगवान को भक्ति की इतनी भूख है, जैसे किसी गरीब आदमी को धन के लोभ हो ना, ऐसे भगवान को भक्ति का इतना लोभ है। अगर कोई थोड़ी भी भक्ति करना चाहता है, भगवान कहते हैं ये बड़ा उदार है, ये मेरे मेरे मेरी सेवा करने के लिए आ रहा है। तो उदार का मतलब हमारी भगवान के सेवा करने के भाव को भगवान इतना पसंद करते हैं, ये बड़ा दानी है। और आपको उदाहरण ऐसा दानी के, महान दानी का देखना है तो बलि महादानी है। सब कुछ भगवान को अर्पण दिया, कर दिया बलि ने, सर्वस्य अर्पण कर दिया। इसलिए हमारी भाषा में परिवाची शब्द हो गया, अरे भाई इसने बलिदान दे दिया। बलिदान दे दिया का मतलब बलि के समान सर्वस्य भगवान को दे दिया, अपना अहंकार भी दे दिया, मैंपन भी छोड़ दिया। तो ये सब उदार है का मतलब है भगवान को पूजना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करने की इनके मन में लालसा है और वो भगवान को बहुत प्रिय है। इन सबको भगवान ने कहा ये बड़े महान है, उदार है। चेतना महाप्रभु को हम कहते हैं नमो महावदन्याय, बहुत बड़े उदार हैं, अति उदार गौरा, भगवान बहुत बड़ी अति उदार है। कैसे, क्यों उदार है? अति है चिराद अदितम निज गुप्त वित्तम, बहुत समय से इस धरती के ऊपर भगवान ने अपने हृदय का प्रेम नहीं दिया था, धन नहीं दिया था, स्व प्रेम कृष्ण प्रेम नहीं दिया था। अति उदार गौरा, ये भगवान चेतना महाप्रभु बहुत उदार है। उदार है का मतलब देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? नाम अमृत, भगवान के नाम का अमृत। और उदार क्यों है? बोला पामर नहीं देखते, तामर नहीं देखते, नीच नहीं देखते हैं, किसी को भी देने को तैयार है। पठानों को मथुरा के पास दे दिया भगवत नाम और पठान भक्त हो गए। तो जैसे भगवान उदार है अपने प्रेम भक्ति देने के लिए, ऐसे भक्त जब उदार होते हैं भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। वैसे हम दुनिया को सब कुछ देते हैं लेकिन भगवान को देने में हमारी बहुत बड़ी कंजूसी है। कोई थोड़ा भी देता है तो भगवान कहता है बड़ा उदार है। तो भगवान हमको उदार कहते हैं, चारों उदार हैं, पर तुम परंतु ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, मेरा मत यह है कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी मेरी आत्मा है का मतलब मेरे समान है। ये ज्ञानी का प्रसंग है, भक्त का प्रसंग नहीं है। भक्त के प्रसंग में भगवान उद्धव को कहते हैं, उद्धव न इतना मुझे लक्ष्मी प्रिय है, न इतना मुझे बलराम संकर्षण प्रिय है, न इतना मैं अपने आप से प्रिय प्रेम करता हूं जितना मैं उद्धव तुमसे करता हूं। मैं अपने भक्त से प्रेम अपने से भी अधिक करता हूं, लक्ष्मी से भी अधिक करता हूं और संकर्षण बलराम से भी अधिक करता हूं। तो वहां भक्त की परिभाषा है और यहां ज्ञानी की परिभाषा है। कौन से ज्ञानी की? एक भक्ति वाला ज्ञानी। ये सामान्य ज्ञानी की बात नहीं है, मायावादी ज्ञानी की बात नहीं है, ये भगवान के विरोधी ज्ञानी की बात नहीं है। ये इस ज्ञानियों का उदाहरण कौन है? बोला सनकादि ऋषि, सुखदेव गोस्वामी, ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञानियों की बात है। केवल कृष्ण के मधुर लीलाओं का गान सुन के सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्ञान को त्याग कर और कृष्ण के मधुर श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को कंठ करके गा गा कर परीक्षित जैसे महान भागवतों का कृष्ण प्रेम का जागृत करके भगवत प्राप्ति करा दी। चार कुमार भगवान के अवतार हैं, ज्ञान के अवतार हैं, मानसिक पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। वैकुंठ के दरवाजे छातवे के ऊपर भगवान श्री नारायण के चरणों में लगी हुई तुलसी और चंदन और केसर के लेप की सुगंध नासिका में गई और एकदम भगवत भक्ति जागृत हो गई। ये है ज्ञानियों, इन ज्ञानियों की बात कर रहे हैं। ये ज्ञानी मेरी आत्मा है, मेरे समान, मैं उनसे प्रिया प्रेम करता हूं। लेकिन भक्तों से प्रेम अपने से भी ज्यादा करता हूं। और आगे कहते हैं, आस्थित सही युक्त आत्मा, क्यों इतना आपको प्रेम उनसे ज्यादा है? आस्थित, आस्थित का मतलब वो स्थित हैं, उनकी मेरे में आस्था है और वो अच्छी तरह से युक्त आत्मा। युक्त आत्मा शब्द जब आए, युक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मेरे से जुड़ा हुआ है। और भगवान से जुड़ने का अर्थ है भगवान की सेवा में लगना। और माम एव मेरे को ही अनुत्तमाम गतिम, वो तो उत्तम गति को प्राप्त करेगा। उत्तम गति क्या है? भगवत धाम को प्राप्त करेगा। कब करेगा ये प्रश्न उठेगा, उसको उत्तम गति मिलेगी। उत्तम गति का एक तो अर्थ सीधा है, जो तम से दूर हो। ये भौतिक जगत तम अंधकारमय है और उत्तम कहां है? जहां तम नहीं है, जहां अंधकार नहीं है। तम का मतलब होता है अंधकार, और जहां अंधकार नहीं है वो, उसके लिए भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं 15वें अध्याय में, न यत्र भाष्यते सूर्यो न शशांकः यद गत्वान निवर्तन्ते तदधाम परमं मम। जहां सूर्य के प्रकाश की, चंद्रमा की शीतलता की, अग्नि की जरूरत नहीं है, वो मेरा धाम है, उसको उत्तम धाम कहते हैं। अंधकार से परे उत्तम धाम को प्राप्त करेंगे। कब करेंगे भगवान ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो कब करेंगे? तब आगे वाला श्लोक आता है, पाठ कीजिए। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सदुर्लभ। इस श्लोक को एक श्लोक में भगवत गीता में ज्ञान योग कहां है? पूरी भगवत गीता के 700 श्लोकों में कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है, भक्ति योग भी है, एक श्लोक में ज्ञान योग कहां है? तो प्रभुपाद जी इस श्लोक को उद्धृत करके कहते थे एक श्लोक में ज्ञान योग का ये श्लोक परिचय है। क्या श्लोक कैसे जाता है? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। अभी भजते था वहां, ये मेरा भजन करते हैं, बहुत जन्मों के बाद ये ज्ञानी मेरा शरण लेते हैं। प्रपद्यन्ते का मतलब शरण लेना। और यहां ये भी परिभाषा करते चले, वैदिक संस्कृति में दो शब्द तो सामान्य रूप से शरणागति के लिए आते हैं, एक को कहते हैं परपना और एक को कहते हैं शरणा। शरण और परपना, परपना भी शरण है लेकिन उस परपना का अर्थ है पांव पकड़ना। संस्कृत में परपना शब्द का अर्थ है जहां पायल पहनते हैं ना, उस जगह से किसी का पांव पकड़ना, मैं आपके पांव पकड़ता हूं, इसको कहते हैं परपना। और जो जो चरण के नीचे अपने आप को डाल दे उसको बोलते हैं शरणागति। अर्जुन ने कहा मैं त्वाम परपनम, मैं आपका पांव पकड़ता हूं, लेकिन भगवान 18वें अध्याय में कहता माम एकम शरणम, शरण लो। सो राजा रामानुज संप्रदाय में इन दो शरणागति के शब्दों के आधार के ऊपर दो विभाजन है, एक संस्कृत के और एक तमिल के अनुयायियों का। परपना का उदाहरण देते हैं, बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ के बैठे, बंदरिया कभी नहीं पकड़ती है, बंदरिया का छोटा बच्चा मां को पकड़ के बैठता है अपने जोर से, मां कितनी भी कूदे बच्चा हिलता नहीं है, गिरता भी नहीं है। इसका मतलब साधक अपने बल से भगवान को पकड़ने का प्रयास करे। मां ने तो पकड़ा नहीं है, बंदरिया का बच्चा छोटा उतर के नीचे चला भी जाता है अपने इच्छा से, मेहमान ने नहीं पकड़ा है, बच्चे ने पकड़ के रखा है। यह है साधन, साधक का भगवान को पकड़ने का प्रयास। और दूसरे पक्ष शरणागति का उदाहरण है बिल्ली का बच्चा अपनी मां के मुख में, वो बच्चा कुछ नहीं करता है, मां जहां ले जाए जहां रखे वो मां की मर्जी, इसको कहते हैं शरणागति। इसमें भक्त कुछ नहीं करता है, भगवान सब कुछ करता है। और परपना में भक्त का प्रयास है, भगवान अब देखते रहते हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णव कहते हैं दोनों की जरूरत है, भक्त के प्रयास की भी जरूरत है और भगवान की कृपा करुणा की भी जरूरत है, दोनों मिलेंगे तब शरणागति होगी। उदाहरण क्या देते हैं, कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया तो कम से कम चिल्लाए तो सही, भाई मुझे निकालो, भाई मुझे निकालो, तो कोई ऊपर से दया करके रस्सा नीचे डाले तो उस रस्से को पकड़े तो सही, तो कोई खींच के बाहर निकाले। तो परपना और शरणागति दोनों को मिलाया, इसलिए देवता बड़े बुद्धिमान हैं। देवता जब भगवान श्री कृष्ण की गर्भ स्तुति करने के लिए कंस के कारागृह में श्री कृष्ण के प्रकट्य से पहले जाते हैं तो दोनों शब्द साथ में बोलते हैं, त्वाम परपना शरण्यम, आपके चरण भी पकड़ते हैं और शरण में भी है, दोनों शब्द उन्होंने एक समय में बोला है। परपना शरण्यम, हम आपके पांव भी पकड़ते हैं आपका शरण भी लेते हैं। तो ये भक्त के लिए दोनों आवश्यक है, लेकिन ये ज्ञानी बहुत जन्मों के बाद, बहु नाम जन्म नाम, माम प्रपद्यन्ते, आपका शरण कैसे लेता है, क्या समझता है? वासुदेव सर्वमिति। वैसे वासुदेव शब्द का अर्थ है सर्वव्यापक, सब जगह हो। वसत्ते देव सर्वत्र। और वासुदेव की परिभाषा समझनी हो तो प्रहलाद महाराज के चरित्र में जब उनका पिता पूछता है कि तेरा भगवान कहाँ है, बोला सर्वत्र है। ये जो सर्वत्र प्रहलाद कहता है इसको बोलते हैं वासुदेव सर्वमिति, कि हमारा भगवान तो सर्वत्र है। बोला खंभे में? बोला हाँ खंभे में भी है, और खंभे से भगवान नरसिंहदेव निकले। तो खंभे को भगवान नहीं माना था, नरसिंहदेव को भगवान माना था। प्रणाम नरसिंहदेव को पहला किया, माला नरसिंहदेव को पहनाई, लेकिन खंभे में भी नरसिंहदेव है। इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए सब कुछ भगवान है। वासुदेव सर्वमिति का ये अर्थ नहीं है सब कुछ भगवान है, इसका अर्थ है सब सब जगह भगवान है। ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? और वासुदेव का जब महात्मा बनेगा तो उसका अर्थ निकलेगा जो वासुदेव के घर में प्रकट होता है, कृष्णाय वासुदेवाय। तो वासुदेव कृष्ण का नाम है और कृष्ण सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, निरंतर सर्वत्र है। बोला कहां है? नई ब्याई हुई गाय हो ना, गाय ने अभी बछड़ा बच्चा दिया हो और कहा अरे जा गाय को ले आ, तो एक आदमी को कहा जा गाय को ले आ, बेचारा गया। अब गाय उसको सिंह से मारे आए नहीं। बोला महाराज गाय आती नहीं है। बोला तुमने क्या किया? बोला गाय को खींच रहा था। बोला मूर्ख कुछ मत करो, जाओ बच्चे को उठा के आओ, गाय अपने आप पीछे आएगी। ब्याई हुई गाय को घर में लाने का रास्ता क्या है? गाय के बच्चे को उठा के आओ, गाय अपने आप पीछे पीछे भागती आएगी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जहां जहां भक्त जाता है वहां भागते हुए जाते हैं। गाय अपने बछड़े के पीछे जैसे भागती हुई जाती है, ऐसे भगवान अपने भक्तों के पीछे भागते हुए जाते हैं। और इसका प्रणाम प्रभुपाद जी, भगवान के भक्त यहां से बड़ी आयु में बड़ा संकट सह के, दो बार हृदय रोग के पीड़ा को सह के महीने की यात्रा के बाद जलदूत में अमेरिका पहुंचे। 6-12 महीना प्रयास किया 65 में, वो भी सितंबर में पहुंचे। 66 की जून जुलाई में संस्था की पंजीकरण किया है और भगवान ने देखा ये मेरा भक्त मेरी भावना को, कृष्ण भावना को अपने गुरुजनों के और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के वाक्य को सत्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान दयालु जगन्नाथ कलयुग में जो पति तपावन है वो भारत से भागते हुए अमेरिका पहुंच गए। प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में अपने कमरे से बाहर आए तो टेबल के ऊपर छोटा 6 इंच का जगन्नाथ जी पड़ा था। प्रभुपाद ने दंडवत प्रणाम किया, बोला भगवान बड़े दयालु जगन्नाथ आ गए, भगवान जगन्नाथ आ गए। तो सब नए नए भक्त, अभी तो 6-8 महीने हुए थे भक्ति में आए को, बोले किसको ये स्वामी जी किसको प्रणाम कर रहे हैं? अभी तो प्रभुपाद भी नहीं कहते थे, स्वामी जी कहते थे। ये स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं, स्वामी जी क्या कर रहे हैं? बोला ये भगवान जगन्नाथ आ गया, बड़ा दयालु है, कौन लाया है? तो पता किया कि मालती माता जी लाई है, जो अभी अभी प्रभुपाद जी की शिष्य बनी थी, उनका पति श्याम सुंदर। मालती को बुलाया, बेचारी डरती हुई आई कि प्रभुपाद ने क्यों बुलाया है स्वामी जी। बोला ये कौन लाया? बोला मैं लाई। बोला कहां से लाई? बोला एक मैं दुकान में गई जिसमें भारतीय चीजें पड़ी थी और मेरे पास पैसा नहीं था, मैं ऐसे घूमते हुए अंदर चली गई। प्रायः पुस्तक वितरण करने के लिए भक्त जाते थे, ऐसे चले गए, झोला साथ में था। अब कितने वह लोग दुकान में, तो हजारों लोग गए होंगे, कुछ अपना लेके चले गए होंगे, लेकिन इसको भगवान जगन्नाथ ने अंदर से परमात्मा रूप में कहा, ये मैं बैठा हूं, यहां इधर आओ, उधर गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी देख के बोला, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या है, कौन है, पता नहीं, जानती नहीं है कुछ भी, पैसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा भगवान ने उसके अंदर में उसको कहा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। अब उसने क्या किया, इधर उधर देखते और जगन्नाथ को अपने झोले में डाल दिया, ऐसे झोले में डाल के ले गई। अब बताओ कि ऐसे इतने सारे दुकान में खाने की चीजें भी होगी, पहनने की भी चीजें होगी, उसको उठाने के लिए ये लकड़ी की छोटी मूर्ति कैसे याद आ गई? भगवान ने प्रभुपाद के कार्य को सफल करना था, और प्रभुपाद वो कही मैं लेके आई हूं, बोला इसके साथ दो और होंगे, इसका भाई बहन। बोला हां वहां थे तो सही, बोला उसको भी ले आओ। अब तो इसको पावर मिल गया कि गुरुजी ने कहा है लेके आओ, अब तो पूरा दुकान गए तो लेके आ जाओ। वो ये वापस चली गई और जाके उन दो को देख लिया, अच्छी तरह से देख लिया, साथ में एक लकड़ा भी देख लिया। बोला फिर कहेगा गुरुजी एक और लकड़ा रह गया, वो भी लेके जाऊं। वो तीनों को उठाया, सुभद्रा को उठाई, बलराम को उठाया और सुदर्शन चक्र को उखाड़ के झोले में डाल दिया, और झोले में डाल के घूमती हुई वापस निकल के प्रभुपाद को लाके दे दिया। बोला हाँ, भगवान बलदेव, सुभद्रा, जगन्नाथ और अपने सुदर्शन चक्र के साथ आप भक्तों के भक्ति को देखकर हमारी सहायता करने के लिए पधारे हैं। और प्रभुपाद ने उनको जगन्नाथ की कथा बताई कि कैसे समुद्र के अंदर लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा महाराज को मिला था, जिससे महाराज ने भगवान जगन्नाथ का ये विग्रह बनाया था, और ये भक्तों को कहा आप भी ऐसा एक विग्रह बड़ा बनाओ। और भक्तों ने जाके समुद्र के किनारे लकड़े वालों से एक लकड़ी दान में मांगी, जो समुद्र के किनारे रहते थे, लकड़ी जहां उतरती थी। फिर बैठ के पहली बार भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा 1967 में 67 में सैन फ्रांसिस्को में निकाली। तब कोई रथ नहीं था, वो ट्रक के पीछे भगवान को बिठा दिया, और एक भी प्रायः धोती वाला भक्त नहीं था, सारे पैंट का क्या पहना हुआ था उसका फोटो देखते हैं तो आश्चर्य लगता है, लेकिन ये पहली रथ यात्रा भारत की सीमाओं से बाहर भगवान जगन्नाथ ने प्रभुपाद के इस कृष्ण भावना अमृत संघ का उद्घाटन किया। ऐसा विस्फोट हुआ उस रथ यात्रा के बाद कि बहुत तत्काल चारों ओर से पुस्तक छपने लगे, भक्त बनने लगे, रथ यात्राएं होने लगी, और इतनी बड़ी भव्य रथ यात्रा इंग्लैंड में जब हुई तो बोला ये जो नेल्सन पार्क में वो जो बड़ा पुतला है, वो टावर है, उससे भी रथ का चोटी ऊपर बड़ी लग रही थी, सारे देखने वाले आश्चर्यचकित थे। तो असल में भगवान कहां मिलते हैं? सर्वत्र तो है, मिलते कहां है? बोला जहां भक्त होते हैं वहां मिलते हैं। बोला जहां भक्त जाता है वहां उसके पीछे भगवान चले जाते हैं। तो भगवान कहां मिलेंगे? बोला भक्तों से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? भक्ति करने से मिलेंगे, क्योंकि भक्त और भगवान के पीछे, भक्त और भक्ति के पीछे भगवान, वैसे भक्त में, भक्ति में और भगवान, तीनों भक्त, भक्ति और भगवान, तीनों माया शक्ति के दायरे से बाहर हैं, उनके ऊपर माया शक्ति का प्रभाव नहीं होता है। ये तीनों के तीनों भगवान की हलादिनी शक्ति के संरक्षण में होते हैं। वहां महात्मा की परिभाषा आगे नए श्लोक में आएगी, नवे अध्याय में, महात्मा नस्तुमाम पारथ देविम प्रकृतिमाश्रिता, महात्मा मेरी अंतरंग शक्ति के शरण में होते हैं। बोला महात्मा कैसे पहचाने, क्या उनके गुण हैं? तब कहते हैं भगवत गीता कहती है, सततम कीर्तनयंतो माम, सदा मेरा कीर्तन करते रहते हैं। प्रभुपाद जी क्या करते थे, पार्क के अंदर कीर्तन करते, कमरे में के अंदर कीर्तन करते और कथा करते, और कोई काम नहीं था। जो निरंतर भगवान के कथा कीर्तन में तलीन रहता है, भगवान उसकी संरक्षण के लिए भागते भागते वहां पहुंचते हैं। ये तो हमने जगन्नाथ के वहां पहुंचने की कथा बताई, लेकिन जलदूता के अंदर जब हार्ट अटैक हुआ तो प्रभुपाद को भगवान श्री कृष्ण साक्षात दूसरे हृदय के झटके के बाद कृष्ण ने कहा, अब चिंता न करो स्वामी, आपकी इस नौका का अब मैं नाखवा बनने जा रहा हूं, अब मैं इस शिप का कैप्टनशिप संभाल रहा हूं, और इसके बाद आपको कोई झटका भी नहीं आएगा। और कैप्टन पांड्य कहते हैं कि स्वामी जी, मैं भी कई सालों से कैप्टन होके जहाज ले जा रहा हूं यहां से, ये इतना सारा एटलांटिक समुद्र शांत मेरे को कभी जीवन में नहीं दिखा जितना आपके साथ जाते हुए हमको शांति से हमने पार किया है। तो प्रभुपाद ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने ये सब प्रबंध किया था, हमारे बस की नहीं है। तो पांड्य की पत्नी कहने लगी, स्वामी जी फिर वापस भी आप हमारे ही जहाज में चलना, तो कम से कम शांति से तो जाएगा। तो उनका मन का ये भाव था। तो यहां जो ये श्लोक है कि ज्ञानी बहुत जन्मों के बाद मेरे चरण पकड़ता है, मेरा शरण लेता है, और वो जान लेता है कि मैं सर्वत्र हूं, और ऐसा महात्मा मिलना भी दुर्लभ है। ऐसा महात्मा जो कहे कि भगवान कहां नहीं है, सर्वत्र है। ऐसा महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है। यहां ये प्रसंग पूरा होता है, आगे के श्लोकों में दूसरा प्रसंग चालू होता है, और वो दूसरा प्रसंग ऐसे है, ये तो लेते, एक तो है जो मेरा शरण लेते ही नहीं, वो तो है दुष्कृत, दुष्ट का कीर्ति वाले, दुष्ट काम वाले, दुष्ट काम करने वाले। दूसरे सुकृति हैं, वो मेरी भक्ति करते हैं, और उनमें से कोई कोई आगे चल पे भक्तों के संग से मेरा शरण ले लेता है, और लेता है जो उनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है, और ज्ञानी मेरी भक्ति के कारण बहुत जन्मों के बाद मुझे सर्वत्र उसको दिखाई दे देता है। ऐसा महात्मा मुल। अब कहते हैं दूसरे कुछ ऐसे हैं जो मेरा शरण नहीं लेते हैं, लेकिन मेरे नियुक्त अधिकारियों का शरण ले लेते हैं, तो वो दुष्कृत नहीं है, वो थोड़ा सा बुद्धि में कम है। अब ये तीन चार श्लोकों में ये परिभाषा आती है, आइए इसको पढ़ते हैं। कामैश तैश तैश हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्यान्यता स्वया। कामैश तैश तैश हृत ज्ञानाः, संसार के भोग की कामनाओं से जिनका ज्ञान हर लिया गया है। कामेश का मतलब कामना है, किस चीज की कामना है, इंद्रिय तृप्ति की कामना है, भोग की कामना है, संसार में कुछ चीज पाने की इच्छा। क्या करते हैं, प्रपद्यन्ते, पांव पकड़ते हैं, किसका, आपका नहीं, अन्य देवता, अन्य किसी देवता का, मेरा नहीं, अन्य किसी देवता का पकड़ते हैं। तो क्या करते हैं, तम तम नियम्यम आस्थाय, और उसी की पूजा के नियम का आश्रय लेते हैं। बोला आपका नहीं करते उधर क्यों जाते हैं, प्रकृतियां, उनकी प्रकृति ऐसी है, उनका स्वभाव ऐसा है, नियता नियता नियत कहते हैं सोया, अपने स्वभाव के कारण। हमारा स्वभाव कैसे बनता है? हमारा स्वभाव तीन गुणों के प्रभाव से बनता है, इसलिए प्रकृतिया कहते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव है यहां, और स्वभाव बनता है प्रकृति के तीन गुणों से। किसी के स्वभाव में तमोगुण की प्रधानता होती है, किसी के स्वभाव में रजोगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि किसी के स्वभाव में मिक्सचर होता है और किसी का स्वभाव सतोगुण प्रधान होता है। तो ये तीन गुणों के प्रभाव से हमारा स्वभाव बनता है। और सारे ही जीवों के ऊपर इन तीन गुणों का प्रभाव समय समय के ऊपर पड़ता रहता है, और सबके ऊपर तमोगुण का प्रभाव रोज पड़ता है। कब? जब सो जाते हैं। 6 से 7-8 घंटे सभी तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। तमो सर्व, तमोगुण सबके ऊपर प्रभाव डालता है। जितना समय लोग सोते हैं वो उसको तमोगुण कहते हैं, किसी कोई कुछ नहीं करते। ऐसे आगे आएगा 14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों में। सतोगुण के व्यक्ति देवता की पूजा करते हैं, रजोगुण की भूत प्रेत की पूजा करते हैं, और तमोगुण के व्यक्ति क्या है, सतो देवता, रजोगुण के भूत प्रेत की, और तमोगुण के क्या, तांत्रिक, क्या क्या श्लोक है निकाल। तो 14वें अध्याय में श्लोक निकालो, तीन गुणों के पूजा करने वालों का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, नहीं मिला, सत्रहवें अध्याय का चौथा श्लोक। यजन्ते सात्विका देवान, कौन सा है वो, ये है जो मेरे को ढूंढना था, ये दूसरा है। ये श्लोक ऐसे है, यजन्ते सात्विका देवान, जो सतोगुण में है देवताओं की पूजा करते हैं। यक्ष रक्षांसि राजसा, यक्ष और रक्षस राक्षसों की पूजा करते हैं। राजसा प्रेतान भूत गणांस चान्य यजन्ते तामसा जना, और तमोगुण के व्यक्ति जो है वो भूत की और प्रेत की पूजा करते हैं। आपके यहां तो उज्जैन के अंदर तो यहां भैरव के ऊपर शराब पिलाने वालों की लाइन लगी होती है ना, है कि नहीं है? आज इनको पीना है उनको तो पिला के पीते हैं, कम से कम धर्म का काम तो करते हैं, धर्म के दायरे से बाहर तो नहीं है। ऐसे ही लेके बाजार से पिए, कम से कम अच्छा है भैरव को पिलाने के बाद पिए। इसलिए कहते हैं भगवान इतना उदार है कि ऐसे तमोगुण के लोगों को भी धर्म के दायरे में रखने के लिए उनके कामनाओं को पूरा करते हैं। कम से कम अंदर तो है, दायरे के बाहर तो नहीं है। तो किसी को अगर मांस खाने की इच्छा है तो काली देवी को उमास के दिन में बकरे का मांस चढ़ा के खाए तो खा सकता है, ये तमोगुण के लिए। इसलिए छह पुराण जो है उनके तमोगुण के व्यक्तियों की पूजा का विधि लिखी हुई है, छह पुराणों में रजोगुण के व्यक्तियों की पूजा की विधि लिखी हुई है, और छह पुराणों में सात्विक लोगों के पूजा की विधि लिखी हुई है, और भागवत तो ऐसा पुराण है जिसके अंदर गुण अतीत जो तीनों गुणों से परे हैं और भगवान की कम से कम सतोगुण से ऊपर उठना चाहते हैं उनके लिए है। तो ये भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है। एक उदाहरण देते हैं इसके लिए, इसके लिए उदाहरण ये है, बेटा है बाप का लेकिन किसी कारण से नाराज होकर चला गया है। अरे बाप तो उसको भूलेगा नहीं, बोटे बेटे का मन में आया, बाप को छोड़ के चला गया। अब पिताजी क्या करते हैं, अपने किसी बहुत ही निकट के मित्र को कहते हैं, मंत्री को कहते हैं, जा भाई मेरे बेटे को तुम जरा समझा बुझा के लेके आना, कुछ मांगता है तो दे देना, वापस कम से कम अपने घर में राज में तो ले आओ। तो ये पूरा ब्रह्मांड भगवान इसका मालिक है, लेकिन जो हम जीव भगवान से बेमुख होके आ गए हैं तो भगवान देवी देवता के माध्यम से कहता है कि इनको जो इच्छा है पूरी करके कम से कम धर्म के दायरे में तो रखो, धर्म के दायरे से बाहर तो नहीं जाए। आज नहीं तो कल ये देवता की पूजा करते 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 देवता से जब मांगना छोड़ देंगे तो देवता इनको मेरी पूजा में लगा देंगे, क्योंकि देवता तो जानते हैं, देवता तो सारे देवता वैष्णव है, ये बात आप पक्की समझ लो, सारे देवता भगवान विष्णु के संचालन में, विश्व के एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट के अधिपति हैं। तो भगवान की सेवा में, विष्णु की सेवा में, उसको वैष्णव कहते हैं, तो सारे ही देवता वैष्णव हैं। कोई उनकी सेवा करेगा आज नहीं तो कल, ऐसे पुराणों में लिखा है, वह हजार जन्मों तक देवी की पूजा करेगा तो गणेश की, तो फिर देवी देवी की करेगा तो शंकर, शंकर जी का करेगा तो विष्णु, ऐसे समय के बाद वो भगवान के पास आ जाएंगे। लेकिन आप जो हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, ये श्लोक क्या कह रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कामैष्टैष्ट हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। ये मान लेना कि सब देवताओं की पूजा भगवान की पूजा है, ये सही नहीं है। यहां क्या लिखा है, अन्य देवता, भगवान कहते मैं नहीं, अन्य, अन्य मतलब दूसरे, वो मैं नहीं हूं, वो मेरे मेरे भक्त हैं, ऐसे तो कह सकते हो, मेरे अपॉइंटेड इंचार्ज है ये तो कह सकते हो। ये काम को देख के और भागवत के काम को पहले एक मिनट बता देते हैं आपको, भागवत के दूसरे स्कंद में, पहले स्कंद के ही अंतर्गत आता है, अकाम सर्व कामो वा, आपको सब कामनाएं हो या कोई भी कामना हो, मोक्ष काम उदार धी, आपको मुक्ति भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तीवरे न भक्ति योगे न, फिर भी भक्ति ही करो, यजते पूजा करो, पुरुषम परम भगवान की पूजा करो। आगे भगवान कह के जाए, दुखी मेरे पास आते हैं, धन के लिए मेरे पास आते हैं, तो मैं भगवान के पास जाना चाहिए ना, और किसी के पास क्यों जाए। बोला क्यों जाते हैं, बोला उनका थोड़ा बुद्धि हर ली है, किसने, हृत ज्ञान, उनका ज्ञान हर लिया गया है। कौन सा ज्ञान हर लिया गया है, वो मेरे को नहीं जानते हैं, क्या करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार, ये स्वभाव इतना प्रबल होता है कि आदमी का स्वभाव बदलता नहीं, बहुत मुश्किल है स्वभाव को बदलना। एक चोर था, स्वभाव चोरी करना था, ये हमारे भक्त ऐसे हैं, प्रसाद खिलाते हैं, फिर कीर्तन में उसको कहते हैं थोड़ा नाचो, तो चोर का मन बदल गया कि अब मैं भक्त बन जाता हूं, और भक्तों ने कहा कि चलते हैं हम, चलो यहाँ से वृंदावन जाएंगे। तो वृंदावन जाते जाते रात को कहीं रुक गए, तो रुक गए तो चोर को रात को नींद आए नहीं, चोर को रात को नींद नहीं आती। अब करे क्या, चोरी करने की आदत है, वो तो गई नहीं। अब ये तो सारे भक्त है, इसका चोरी क्या करेगा। फिर भी आदत उसकी इतनी पक्की थी, उसने एक भक्त के थैले से धोती निकाली, दूसरे के थैले में डाल दी, एक का लोटा निकाला दूसरे में डाल दिया। सुबह सब उठ के कहते मेरी धोती कहाँ है, मेरा लोटा कहाँ है। अरे सब आपस में झगड़ रहे हैं, और ये कहता है भाई देखो तुम्हारा धोती उसके थैले में, तुम्हारा लोटा उसके थैले में। बोला ये किसने किया, ये बोला मैंने किया। तुमने क्यों किया, बोला भाई मैं देखो चोर था, मेरी आदत है रात को नींद आती नहीं है, सामान किसी का नहीं उठाता हूँ तो मेरे को भूख भी सुबह नहीं लगती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपके संग में चोरी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी हेरा फेरी कर दी, इधर का उधर रख गया, उधर का उधर कर दिया। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। ये स्वभाव जिसका होता है ना, वो वहीं जाके खड़ा होगा। कितना भी प्रयास करो बहुत मुश्किल है स्वभाव को बदलना। लेकिन चोर भी कैसे भक्तों के संग में आ जाए और भगवान का नाम उसको लेने की आदत पड़ जाए, तो चोरों का भी उद्धार हो जाता है। चार चोर थे, चोरी करते थे, तो उन्होंने कुछ कोड वर्ड बना के रखे थे। कोई देखते थे सेठ आ रहा है ना सामने से,